चक्र एक प्रकार से लोगों के साथ में, कईयों के साथ में, जब भी शाम को आते हैं उस समय में उन्हें इसका हाथ से और पिता अवलोकन के द्वारा उनके तरफ में देते हैं उनका सारा दुख किंतु हमारे लिए क्या ऐसा दर्शन कभी भी संभव नहीं हो सकता। एक तो उन्मुक्त कृष्ण का दर्शन और कृपा अवलोकन नहीं हो सकता, यदि होगा भी तो हम लज्जा धैर्य इत्यादि कोई जो लगा नहीं दे सकते। हम अबला नहीं है जो उनके रूप दर्शन से आकुष्ट होकर के सबको जलन भी दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, इसलिए हमारे लिए संभव नहीं है। इसीलिए ये गोपियां हैं पुण्य पुण्य माँ को आज नहीं कर सकते
अच्छा इसी भाव
गोविंद
Bye. जाए।
क्या प्रकट सुनाया था वो योग से प्रचार प्रचार था उसमें रमन पहले आचार्य जिन्होंने मायावाद का खंडन करके भक्ति की स्थापना की रमन से आचार्य के संन्यास जो जमना चाहिए किंतु एक विद्या गुरु है और एक शिक्षा गुरु है एक संन्यास गुरु है। विद्या गुरु कौन है?
सर्वाचार्य।
कौन से सर्वाचार्य?
सर्वाचार्य अद्वैत अवलंबी
अद्वैत बात के अद्वैत बात की शिक्षा लेते थे उस समय बड़े बड़े आचार्य लोगों को भी अद्वैत बात की माया बात की शिक्षा देते जाताचार्य जी से रमन का संबंध अपने विशेष बात का बदलाव कौन बदलाएगा बदलाएगा पढ़ने के समय क्या क्या दो एक बात विशेष दो अरे तुम्हारे को दे दो ना
तो मैं ज्ञान चंद्राम
जो पानी से चार्ज पीता है पानी फैलता है वो कौन है
सूर्य
वो सूर्य के विकसित कौन कौन चीज होता है
सूर्य मुझे के प्रभाव
ये कॉफी आसम मैंने कॉफी जो पानी लेता है कौ मैंने सूर्य पानी को लेकर के और फिर उसने कमल को जो खिला देता है अपने किरणों से उसके समान तो वो कहते हैं जो कमल है कमल के समान जिनके मित्र हैं ये
अर्थ
है वो मतलब जो
तिब्बती
इसलिए वो शुद्ध हुआ शुद्ध जिसको अपनी किरणे से खिलाता है वो हुआ कमल कमल के समान
भगवान के
भगवान शंकर के बस संग रह गया। दूसरी बात देखा जिसके लिए तो बड़ा भाई वैष्णव होगा माया बात का खंडन करेगा इसलिए उसको जान से मरवा देना मारने के लिए उन्होंने कहा जिससे चलो हम जाएंगे बाहर में काशी जाएंगे
जंगल
काशी जाएंगे और हमारे साथ में तुम लोग चलो तो इनको भी लिया और भी साथ में 10-15 को लिया जो उनके मायावादी लड़के थे बीच में जंगल में जाकर के उनकी योजना थी इसे मार किया जाए और पास किया जाए इसके पास में था किंतु रमन के पास में सुरेश था
उनके मोतेरा भाई गोविंद था
गोविंद अब उसमें रमन उनका मोतेरा भाई उसमें वो भी था
रमन जो
रात में जाकर के रमन उसको कहा गया तुम इसी समय में चले जाओ हमें तुमको ये मार डालेगा
लखन के शिक्षा
जब रमन रात में निकल रहे थे वहां से बहुत दूर चले आए थे रात में निकले कोई रास्ता पता नहीं जंगल में उसी समय लाल सिंह भी हुए कोई आया वृद्धा में और उसको लेकर के एकदम वो लेकर के उनको बैंक चाकर में जहाँ बोलाते थे वहां पर पहुंचा दिया सवेरा में जा रहा था उनको पता नहीं कि मैं कहाँ आ गया कल तो अब तुम निकट में आ गए हो और ये कह करके झट अंतर ध्यान हो गए लाल सिंह सहित वो शंकर जी या
दोनों
पर अंतर ध्यान हो गए जब वो सवेरा और बात आई ये तो मैं अपने राम में पहुंच गया इस तरह से भगवान ने उनकी रक्षा की। एक समय की बात है रामानुज के जो गुरु थे उन्होंने कहा कि देखो तुमको ये मंत्र देता हूँ नारायण तुम किसी से मत कहना इस मंत्र को मैं तो मंत्र की शक्ति हानि हो जाएगी उन्होंने ठीक है नहीं कहूंगा ये बात उन्हें किंतु गुरु जी का कहना उन्होंने सुन लिया और उन्होंने नारायण मंत्र उनको दिया और कहा कि यदि ये कोई मंत्र करता है तो सब कुछ मैं कुछ दिनों के बाद में बैठी चुका मंत्र लेकर के आए और कुछ गांव के शहर के बीच में एक मकान के छत पर खड़े हो गए जहाँ के हजार लोग जैसे कि यहाँ पर होली गेट है ऐसे खड़े हो गए बोले भाइयों तुम लोग जो मन को दान करता हूँ उसको कर और तुम लोग को बैटरी की गति दो ऐसा सत्य में जहाँ कर हजार लोग जो आ रहे थे सबको सुना सुना करके उस मंत्र को वो बोलने लगे गुरु जी ने सुना गुरु जी दौड़े ही आए इसलिए क्या कर तो ये मंत्र की शक्ति हानि करके जुटा रहा है इसलिए तुमको नरक जाना पड़ेगा मैं गुरु जी मैं नरक में जाना चाहता हूँ तो लाखों लोगों का कल्याण करके जाऊंगा बस तो गुरु जी की मूर्ति बंद हो गई मैंने कहा कि कुछ यथार्थ में जिस मैंने वो शिक्षा प्राप्त कर ली है और स्कूल अपना खोल दिया उसमें मैं जानना चाहती थे एक गुरु भाई को वो शुद्ध जाति के थे सही वस्तु सही वस्तु वो नीच जाति के थे किंतु उन्होंने शास्त्र में इतना सा देखा था जो कोई ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो शुद्ध हो कोई क्यों न हो कृष्ण का भजन करने वाला कृष्ण तत्व को जानने वाला ही गुरु शिवा पुत्र शिवा शिवा पुत्र शास्त्र में भी ऐसा कहा गया कि किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो कृष्ण तत्व को जानने वाला जाति से ऊपर हो जाता है उसको गुरु बनाओ ब्राह्मण यदि समस्त शास्त्रों को जानता है उसकी उपलब्धि नहीं है भजन खुद नहीं करता मत गुरु बनाओ शुद्ध यदि भजन करता है अब सबको जानता है उसको गुरु बनाओ उससे कल्याण इसलिए उन्होंने उनको सैद को अपना गुरु बना दिया जमुनाचार्य के गुरु भाई या उनके शिष्य इसके बाद में घर में उनकी रोज पूजा करते वो अपनी स्त्री के साथ में इनके पास में आकर के रहने लगे उनको रहने का स्थान भी दे दिया और सारी दौर का ये करते थे और स्कूल में पढ़ाते थे संस्कृत एक दिन उनकी पत्नी पहले से जली जुली हुई थी इसलिए जब पानी भर रही थी तो उस टाइप उनकी स्त्री भी पानी भर रही और उसमें पानी का घड़ा जिसका ऊपर आया उसमें से उछल करके पानी यमुनाचार्य के स्त्री के घड़े में पड़ गया बस बड़ी बिगड़ी पानी तो फेंक ही दिया और उनको दो चार दस बातें खूब सुना शुभ्राणी को करके आती है हम लोगों के यहाँ लज्जा नहीं आती है खबरदार यहाँ पर तुम हमें पानी का दिया उसको डांट सकता दिया तो रोटी मिल गई सहकून के यहाँ करी सहकून ने कहा कि अब हम लोग यहाँ रहना उचित रामायण उनको आदर करते हैं कि तुझे बड़ी वेट उठी रखती पर तू चले चले गए तो इन्होंने सोचा कि ऐसी स्त्री के साथ में रहना हमारा जब गुरु को भी सम्मान नहीं देता हमारा पारमार्थिक और पहले है इसके बाद में संसारी बस उन्होंने बहाना बना करके क्या किया उसी समय एक और घटना हो गई एक ब्राह्मण आया रामानंद के यहाँ स्कूल में मैं आपके पास में आई हूँ मैं भोजन नहीं किया कुछ दिनों से मैं भोजन चाहता उन्होंने आप साथ से जाओ हमारे घर में भोजन बना तो आऊंगा हमारी स्कूल से मांग करके खा उन्होंने संदेश के दिया ये जा रहा है ब्राह्मण इसको खिला दिया किंतु उस ब्राह्मण को उसने दूध का करके खड़ा दिया नहीं खिला जब हुआ था तब यह और कुछ पिता ने उनकी चिंता हुई ये एक भगवत धर्म के बाद विरोध कर रही है साथ ही साथ एक दूसरे ब्राह्मण को बुला उसी ब्राह्मण को और कहा कि देखो तुमको पत्र देता हूँ ये पत्र लेकर तो उसके पास में जाओ उन्होंने पत्र लिखा बहन मैं तुम्हारा भैया पत्र दे रहा हूँ या बाप की तरफ से लिखा हमारे बेटे की शादी है तुम जल्दी से आ जाओ मेरी बेटी और इसके साथ में ब्राह्मण से ये न्योता भेजा रामानंद जी ने अपने हाथों से वैसा पत्र लिख करके नारी आऊंगी और चिट्ठी में हल्दी देकर और दुर्गा पाठ देकर उसे बांध करके जैसा होता है निमंत्रण और निमंत्रण के साथ में उसी ब्राह्मण को कहा कि जाओ हमारी बिजली को दे दो। तो वो लेकर के गया तो ये कहाँ से आ रहे हैं, तो उसने उसके पिहर का नाम बतलाया कि तुम्हारे बाप के यहाँ से आ रहे हैं। अच्छा बस उसको बड़े पलंग पर अच्छी तरह से बैठा करके पैर धो करके उसकी पूजा करके उसे अच्छी तरह से खिलाया पिलाया और वो चिट्ठी खोल करके देखी तो बड़ी खुश हो गई कि हमारे भैया ने और पिताजी ने बुलाया है। बड़ी खुश होकर के राम उसकी प्रतीक्षा करने लगी और उनको खिला पिला करके वो भेज दिया। जब रामानी लौट करके आए तो बड़ी प्रसन्न होकर के आज उनको प्रणाम भी किए और बोली जैसे हमारे भैया की शादी है इसलिए आप और हम दोनों चले और ये अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं विवाह के दिन आ जाऊंगा तुम आज चली जाओ, तो मैं अपने किसी को भेज देता हूँ तुम्हारे साथ में, तुम जाओ और वहां पर मेरी प्रतीक्षा करना मैं आ। ये कह करके उसको तो भेज दिया ससुराल और उसी दिन सवेरे उठ करके घर संसार सब छोड़ दिया और छोड़ करके चल पड़े फिर जंगम में चले जहाँ उनके गुरुजी थे कौन
महापूर्ण
यमुनाचार्य, यमुनाचार्य उनके गुरु उनके पास में जाना चाहते थे संन्यास के लिए। जब वहां पर पहुंचे जब श्रीरंगम में तो देखा क्या सब लोग विमान पर अप्रकट हो गए हैं, शरीर छोड़ दिए हैं उनके गुरु जी और उनको लेकर के हजारों आदमी चले जा रहे हैं समाधि देने के लिए। इसे में रामानी आए रामा जी रोने लगे जैसे मैं इनसे संन्यास लेने के लिए आज घर छोड़ करके आया और गुरु जी हमको कितनी बार बुलाए थे कि तुम आ जाओ मैं नहीं गया और आज आया तो ये छोड़ करके चले गए रोने लगे भाई भाई हमको दर्शन तो करा दो। तो उनको नीचे उतारा गया और मट्टी पर रखा गया, उनके कपड़े थोड़े से हटा दिए गए, उन्होंने दर्शन किए, दर्शन देखा तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ की उंगलियां तीन ऐसी है, सीधा तो ठीक है किंतु तीन उंगली उनकी ऐसी बंद मैं जैसा क्यों तो कोई नहीं बतला सका। तो उसी भरी सभा में उन्होंने प्रतिज्ञा दी मैं यमुनाचार्य से संन्यास ले रहा हूं। सब सात्विक उन्होंने कहा मैं अपने रीति संसार में अपने पूर्व जो हमारे गुरु लोग हैं भक्ति का प्रचार किया सर्वत्र, मैं इस भक्ति का आचार और विचार का प्रचार और काफी काफी मैं ब्रह्मसूत्र के ऊपर में एक वैष्णव अपने पूर्व आचार्य के अनुसार एक हाथ से लिखूंगा जो उपनिषद वेद इत्यादि के समर्थित होंगे प्रमाण के अनुसार में और हमारे सब संप्रदाय में वो द्वितीय होगा मान्य होगा स्वतः द्वितीय लोग देखकर के आवाज रह गए। इसीलिए इनको यहाँ आए और उनकी अस्थि रखी गई और उनकी हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया ये जब आपसे सीखे बस उसी समय वहीं पर उन्होंने संन्यास लिया उनके सामने और संन्यास लेकर के वो गए श्रीरंगम में। इसके बाद में उनके बहुत से शिष्य थे बड़े बड़े ग्रंथ कम से कम तक 20-25 बहुत बड़े बड़े शिष्य वो अपना अहंकार छोड़ करके विश्रांत थे विद्या का अहंकार सब कुछ छोड़ करके एक ही शिष्य के पास में दो दो महीने चार चार महीने दस दस महीने रह करके उनकी सेवा की और उनसे जो ड्रामा यमुनाचार्य से उन्होंने सुना था सबको उन्होंने संकल्प किया सुना और सुन करके उसने हृदय धारण किया वो तो धर्म सेवा की। इस तरह होने के बाद में सब वो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किए बिना गुरु भाइयों के जो उन्होंने सुना है यदि कोई नहीं सुनता है गुरु भाइयों से शिक्षा गुरु से या दीक्षा गुरु से उनको कोई शिक्षा गुरु से सुनने का समय नहीं मिला अपने गुरु भाइयों से अहंकार छोड़ करके और सब छोड़ करके उनसे सीख करके काफी एक समय की बात है कि एक कौन सा बहुत सी बात तो अब सुनाने से किया जाएगा
वो तो बहुत बार तुम लोगों ने सुना है। पुरुष ने उनके लिए ध्यान दे दी, आंखें दबा दी और उनकी कृपा से फिर आंखें लौट आई। एक स्त्री उनके लिए रामायण की सेवा करने के लिए अपने सब चित्रों को भी हाथ में उसको छोड़ने की चेष्टा की और उसका भी सब कुछ तोड़ा गया और जो बदमाश था वो उनका रामायण उसका ठीक कर दिया। इस तरह से रामायण में बहुत बहुत सब आश्चर्य बात है, ये भी बहुत सी शिक्षाएं हैं। हम लोग किस लिए पालन करते हैं, आज किस लिए उनका ये विचार है। रामायण में भी बहुत से आचार विचार हैं जिसको हमारे प्रभुपाद ने, हमारे आचार्यों ने, जीव गोस्वामी ने उसको ग्रहण किया है। जिस प्रकार से सहिष्णु थे, किस प्रकार से अपने ज्ञान देकर के भी अपने संप्रदाय के विचारों में सिद्धांतों में उनकी निष्ठा थी। उन्होंने गुरु और शिष्य के संबंध में बतलाया है, गुरु उच्च कुल का होना चाहिए, शिष्य भी कैसा होना चाहिए, उच्च कुल का। गुरु को जैसे सहिष्णु है शिष्य भी वैसे सहिष्णु हो। गुरु जी से पहले उठे और गुरु जी विश्राम करने के लिए जब रात में जब जाए उसके बाद भी उनको सुला सुला करके सारी श्रद्धा करके तब सोए और जो साधन भजन है पूरे ठीक से करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सहिष्णु से रहे, क्रियागति सुनिश्चित हो। उनके तरफ से 40 ऐसे उपदेश हैं जो हमने पत्रिका में भागवत पत्रिका में दिया था जिसको प्रभुपाद ने संकलन किया था। आज के दिन में हम लोग उनके जीवन चरित्र को सुन करके वैसे ही बनने की चेष्टा करेंगे तो शुद्ध सत्व हमारे हृदय में और भक्ति आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। इसलिए रामानंद का कभी मध्वाचार्य का कभी कभी रघुनाथ दास गोस्वामी का कभी संत दाम करती ये सब हम लोग सहाय चाहते हैं उनके विचारों को ग्रहण करने के लिए, दूसरों को सिखलाने के लिए नहीं, अपने जीवन में पालन करने के लिए। तब तो भक्ति होगी, अन्यथा भक्ति नहीं होगी। इसलिए रामानंद का आदर्श जो हमारे लिए ग्रहणीय है, जहां तक प्राथमिक विचार इत्यादि है, आचार विचार है, इसको और उपासना क्षेत्र में हम महाप्रभु जी के विचारों को, रूप गोस्वामी के विचार को ग्रहण करते। इस प्रकार से आज रामानंद का विचार ये रामानंद माने लक्ष्मण के अवतार कारण। अभी आज से नौ दुर्गा का या कब से आरंभ हो गया, नौ दुर्गा नौ दुर्गा। हमने ये पूछा एक आदमी से जो नव दुर्गा कर रहे थे, भाई नव दुर्गा में आज दुर्गा जी का जन्म है, न विवाह का दिन है, न क्या है, आज किस लिए नव दुर्गा? पंडितों शास्त्र में होना चाहिए, कहीं भी शास्त्र में नहीं है नव दुर्गा। मैं कहां से ये आप बता दें, लोगों को समझाने पर भी नहीं समझे, किसी भी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है नव दुर्गे का। इस समय में और रामचंद्र जी जब से बंद नलिका ने यहाँ से जा रहे हैं गोदावरी के तट से जा रहे हैं लंका में विजय करने के लिए, विजय करते हैं, लेकिन वहां से कहां तपा पड़ती है। दुर्गा जी का जो स्थान है वो तो ठीक है, दुर्गा जी का विचार हमारे शास्त्र में लिखा है, उनकी उपासना की भी बात है। जो कामी पुरुषों ने जो संसारिक कामनाएं जिनके अंदर में होगी वो लोग पूजा करें और पूजा करके कामनाओं को पा करके उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम्स बन गए संसारी ये बदल पड़ जाएंगे। उन्होंने तीन पुत्र दिया, पुत्र माना देवी से और उन्होंने दिया और तीनों पुत्र धुंधकारी होंगे, तीनों में कोई भी नहीं माता पिता की सेवा करेगा। तो अभी देवी की पूजा है, आय शिक्षित राधा जी हुई तो दुर्गा जी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक छाया है माया और एक है काया माया। काया माया मैंने जोग माया, जोग माया की भी मूल राधिका की है, राधिका जी की पूजा करने से छाया इत्यादि सबकी पूजा हो जाती है, लोगों को समझ में नहीं आया। रामचंद्र जी का जन्म ये नवमी को हुआ तो नवमी के लिए नौ दुर्गा, एक से लेकर के नौ नौ किसी तक तो ये नौ दुर्गा मनाने लगे। कौन? जिनको सांसारिक कामनाएं वासनाएं हैं। क्यों हुआ? बंगाल में कोई थे दुर्गा की पूजा करने वाले, उसने रामायण लिख दिया नया और उसने लिख दिया रामचंद्र जी ने उसकी पूजा की।
इसलिए लोग तो मूर्ख होते हैं साधारण रूप में, चिड़िया घटान की तरफ में एक देर को फिर दिया उधर में तो सभी धरे चले। वैसे ही लोग जो है तो हम ये देखते हैं रामचंद्र जी ने दुर्गा जी की पूजा की, कैसे पूजा की, 108 कमल रामचंद्र जी लाए और उस एक कमल से उनकी पूजा करी। पूजा करते करते अंतिम दिन में देवी जी ने उसको चुरा लिया एक, अब एक ही कमल बाकी था और एक ही दिन की पूजा बाकी। जब चुरा लिया तो रामचंद्र जी देख रहे हैं कि फूल कहाँ गया और दुर्गा जी के पूजा में देरी होगी। उन्होंने अपना कमल लैंड है कमल कृष्णा, इसलिए उसने अपने बाण से उसको निकालने की चेष्टा की और उसी से पूजा करी। इस समय दुर्गा जी ने कहा इस समय प्रसन्न हो गई शुभ बर्ण कमल, ये शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। पृथ्वी जी ने ऐसे झूठ मुझको लगा दिया और लोगों ने कहा बात यही तो रामायण अर्थ भी है, बात दूसरी वाला था रामायण था ही नहीं, यही बस दुर्गा जी की पूजा आज से 250 वर्ष पहले आ रही है। 18वें संसार में जहाँ जहाँ बंगाली हैं वो धीरे धीरे पूजा करना आरम्भ किया और करते 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 वहाँ पर भी वैसे वो सुअर की बलि देते हैं, बकरी की बलि देते हैं, अपने बेटे की तो बलि नहीं देते, बलि देकर के पूजा करते हैं। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। राजा जी की यदि पूजा होगी कृष्ण की तो अपने आप सब इस समय रामायण पाठ करना चाहिए। भगवान जी रामायण है या तो सिर्फ सीता में कोई भी बात है तब कहो नौ दुर्गा जी की पूजा कहाँ से ले, अरे दुर्गा जी की पूजा करो। हम पूजा के लिए कृष्ण ने भी भागवत में बदला है दुर्गा जी की पूजा अपने स्थान पर होगी। कुछ लोगों से समझ नहीं, जब सुख चाहो जीवन में तो महापति की पूजा करो, सीता जी की रामचंद्र की पूजा करो, राधा और कृष्ण की पूजा करो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो और उसकी पूजा करो, ये तो असल पूजा है। लोगों से समझ में ये सब चीजें नहीं आती। तो हम लोग यदि नौ दुर्गा का करना है तो राधा जी की पूजा करो और कृष्ण की, और पढ़ना है तो दुर्गा संहिता नहीं पढ़ सकते भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, रामचरित गीता रामचरित मानस पढ़ो, उत्तरकांड वाला पढ़ो, सुंदरकांड का पढ़ो, सुंदरकांड पर पढ़ो, उत्तरकांड पढ़ो। जो कामना बस में लगा लेते हैं मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, हमको सुंदर सी काली दांत बाहर वाली हमको इससे मिल जाएगी, हमारे पति बूढ़ा आ जाएगा, ऐसे ऐसे सब कामनाओं के लिए लोग करते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति हो ऐसी उपासना होनी चाहिए जैसे कि और कोई भी जीवन में दुख न आए। मानो जसोदा जी को बहुत आग्रह है बुलाने का, यशोदा जी के रसोई बनाने से कृष्ण की तृप्ति नहीं होती और उनमें शक्ति नहीं आती, दुबले पतले हो रहे हैं। इसलिए मानो यशोदा जी को लाख सड़क है, इसलिए बुला इन गोपियों को जाने की इच्छा नहीं। हम लोग अपने पति के घर को साथ को सुनकर हम दूसरे के घर में नहीं जाती, कौन कह रहा ये गोपियां राधा जी का। ये तो भीतर की इच्छा क्या
है,
कब जाए कब जाए कब जाए
कब सुबह सुन,
किंतु ऊपर से कहते हम नहीं जाएंगे। बड़ी मुश्किल से जब उनकी सास उनके पैरों में नाक रगड़ती है कि नहीं तुम नहीं जाने से यशोदा जी का मांग जो है वो नहीं आएगा सर पर, उनके अलंकार और वस्त्र जो दे रहे हैं नहीं मिलेगा और हमारी सारी गैया मर जाएंगी और हमारा बेटा भी मर जाएगा जो मैंने कहा है, इसलिए उसको भेजना जरूरी है। इसलिए बार बार आग्रह करते भेज रहे हैं और ये यहाँ पर जाते हैं। रसोई बनाना तो एक बहाना है, वो तो वही मैया भी बना देंगे और उसी के बहाने में कृष्ण का दर्शन करते हैं, उनसे मिलन भी होता है। इसके बाद में जब भी खाने पीने बैठते हैं तभी आंखों से मिलन होता है। इसके बाद में कृष्ण जब वन में जाते हैं तो शेख सीमा तक ये वहां तक मिल जाते हैं, फिर लौट आती है। लौट आने के बाद में माला उठना इत्यादि घर का काम करना और सूर्य पूजा के लिए फिर निकल जाती है, ये भी बहाना बना और कृष्ण से मिलती है। फिर कृष्ण के गोचारण से लौटने के पहले ही अपने घर में लौट आती है और लौट करके फिर जब कृष्ण बंसी वादन करके जब कि ब्रज में आते हैं आवश्यकता से सहायम शायद जब आवश्यकम जबकि ब्रज में प्रवेश करते हैं उसमें फिर ये कमी हो जाती है। इसमें उनका तिरस्व हुआ, तिरस्व आने जाने के समय में या घर में कभी कभी वो बैठ करके उसमें भी वेणु जी जैसे संवाद उनके होते हैं और उसके मायने में कृष्ण की स्फूर्ति होती है जो विलन से भी अपूर्व उसमें रसा रसानंद होता है उसका आस्वादन होता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं हमने इसकी व्याख्या हमने कल की थी। कभी है कि जैसे यदि हो सकता है ये ब्रजवासियां ब्रज की रमणियां कृष्ण को प्रकट उनके मिलने में और जिला दोनों में जो उनसे मिलती हैं उनका जो आनंद और सुख होता है। मान लिया जैसे कृष्ण कंस को मारा और कंस को मारने के बाद में इनके माता पिता छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये कृष्ण वसुदेव और बेटी के इन सबको ये दृढ़ धारणा है और वसुदेव जी ने बचाने के लिए वो केवल दे आए थे गोपी में, इसलिए कृष्ण का यहाँ रहना संभव है रहे जरूर। और इसी कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव किया जब सुतना को अगासुर को बकासुर को ये न मारा, आज कृष्ण भी आज ही मारेंगे इसको जरूर। कैसे मालूम, जब छोटे होकर के भी असुरों से युद्ध कर रहे हैं और वो करके पीछे जब फिरते हैं तो बहुत दूर तक आप खा रहे हैं कि बाहर में उसको खेल देते हैं और उस समय में रोक के वो अपने अधर अपने दांतों से अपने अधर को दबा करके रोक कर ऐसा जबकि दूसरों पर भक्तों पर देखते हैं सखाओं के प्रति या इन ब्रजवासियों के प्रति नंदबाब उस समय क्या करते हैं मुस्कुरा देते हैं। इसे देकर के कह रही कि हो सकता है कि पीछे कृष्ण से हम लोगों का मिलन हो कृष्णों को देखेंगे ये तो या तो नहीं देख सकेंगे। गोपियों को कितना आनंद होता हम लोगों का आनंद होगा नहीं, क्यों नहीं होगा ये बात को समझ रही है। उनके दिल में ऐसा प्रेम है जो प्रेम के द्वारा कृष्ण के लिए चीजों का रूपता और सब बातों का आस्वादन करती है, हमारे अंदर में वो नहीं है। हम अपने सास और ससुर के डर से घर से निकल नहीं सकेंगे, अपने पति के डर से निकल नहीं सकेंगे, मेरे लिए संभव हम लोगों के लिए संभव नहीं, इसलिए ये पदार्थ उनके जाए। होगा ज्ञान कृष्ण से मिलकर। किंतु वो ऐसी अभिव्यक्ति बाकी भाव से जो गोपियों की है हम लोग कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए वो कह रही है कि गोपियां ही पुण्य रखनी है। भूमि पुण्य जैसे भी दिगा किरण सुख में वो निकल गए सब जगहों को चार करने के लिए जाए कुंभनी की भांति मृतक हो जाते हैं किंतु चाय का तो अब आप जब भी आते हैं अभी तक तो चाय फिर जाता है अपने अपने घर में और काम करने पर भी कृष्ण जब आते हैं अटारियों से सड़कों से कुंजों से कृष्ण का मुझे दर्शन करते हैं। उस समय में वो घर से निकलती हैं क्यों निकलती हैं कृष्ण को दर्शन करने के लिए गोपियां उनको अपला किसलिए कहा अपला ना किए अर्थ बतला रहे हैं अपला किस लिए अपला उसको कहा जाता है जो किसी काम करने में असमर्थ है उसको कहते हैं अपला जिसको बल रही है। गोपियां ये बतला रही हैं ये गोपियां वनगमन के समय तक कृष्ण के दर्शन करने के लिए वहां जाती हैं। इस प्रकार से प्रातः और सायंकाल कृष्ण के दर्शन का अवसर प्राप्त होकर ये अवलाकन में अपने पत्नियों के शासन से ये निकल नहीं जाए निकलती नहीं इसलिए अवला अपने धर्म की हानि से कृष्ण से नहीं मिल सकती इसलिए आता है। किंतु ऐसा होने पर भी जब कृष्ण की बंसी बजती है और आकाश में धूल उठती है तो रुकने का क्यों नहीं रुक पाती तो रुकने का बल उनमें नहीं क्यों बंसी ने उनके अंदर में आकर के उसके बल को इसलिए नेत्र की भांति अपने आप किसी में चल जाती है अपने को वो रोक नहीं पाती है इसलिए इनको अवला कहा गया। अथवा वेदना आक्रमण करके काम देने से बल ही ना कहीं से मिलने के लिए उत्साह भी हो जाती हैं अपने को रोक नहीं पाती हैं इसलिए चिंता करने पर भी नहीं रोक पाती इसलिए अवला शब्द का प्रयोग न करूंगा। यद्यपि दीक्षित ने भी काफी भवन महाप्रसाद उतर लिया दीक्षित ने भी गोपियों को या उनवासियों को एक जीवन में इतना आनंद उनको होता है जो समस्त आनंदों के सिर पर भी चढ़ करके वो नृत्य करता है वह किंतु इसकी अनुभूति दूसरों को नहीं होती ये शॉर्ट सब्जेक्ट है शॉर्ट सब्जेक्ट है मैंने क्या
अपने हृदय में अनुभूति के बाद
दुर्गा को नहीं जान सकता यहाँ किसी कृष्ण भी उस आनंद को नहीं जान सकते इसलिए कितना स्वस्थ है इसलिए वो कहते हैं किंतु वही संतरियों के अनुभव बन रहे हैं शॉर्ट सब्जेक्ट दुर्गा नहीं जान बल्कि दूसरा क्या कहता है उद्धव कहते हैं बहुमुखियों की इतनी यतना ये विधियां हैं और इतना सुख भोग रही है दिन रात रोती है तड़पती है स्नान नहीं कर पाती भोजन नहीं कर पाती है हम यहाँ नहीं रहेंगे रहने तो हमारी भी दुर्दशा ऐसे ही नहीं हो जाए इसलिए चले गए मथुरा लोग। जब उद्धव की ये दशा है जब उद्धव समझते हैं कि कृष्ण प्रेम की चरण सीमा है और उसको ले नहीं सके लौट गए तो दूसरे आदमी कहते हैं कि गोपियां तो बड़ी दुखी थी निकल थी इसलिए उनके उनके चरण में अपराध हो जाने का डर इसलिए दूसरे समझ इसलिए लोग गोपियों की निंदा करते जो नहीं समझ इसलिए कृष्ण उसको छिपा करके रखते हैं इसीलिए गोपियां को संबंधित किस भाव को गोपियां ही समझेंगे। विशेषता जीरा पिता जब उत्पन्न होती है बहतालाओं के असाधारण महात्मा व्यंजन भाव उसमें जल रहा है क्या कृष्ण के प्रति गोपियों के जो भाव हैं बहुत उसे चले जाते और इसमें बहुत सारा जगह दिखलाया गया है कृष्ण के जीवन में गोपियों के कृष्ण के प्रति कैसे भाव होते हैं, किंतु ये नहीं दिखलाया गया, किसे दिखलाया जाएगा इसके बाद के श्लोक में। कृष्ण के कृष्ण का गोपियों के जीवन में गोपियों के प्रति उनका क्या भाव, ये तो भाव समझो, यानी इस भाव को दिखला रहे क्या जीवन में और जीवन में गोपियों का क्या भाव होता है कृष्ण के प्रति, उसको बतलाया तो हम देखते उसमें जो आनंद है, आनंद की अनुभूति वो भजन की अतिरिक्त ऐसे ही नहीं समझ नहीं समझ। एक आदमी रो रहा है, उसका बेटा आया बहुत दिनों के बाद में परदेश से, किसी का पति आया बहुत दिनों के बाद में परदेश से, उसको बहुत प्यार करती है, उसको देखकर तो रोती है क्या आनंद रोने की क्या जरूरत, ये दूसरे को नहीं समझाया जाता। इसी को कह रहे हैं गोपियों के भाव को समझाना बड़ा भारी कठिन है। यद्यपि परमहंस हेतु महापुर देवता जो देवता के मैंने तक के बारे को नहीं जाना जा सकता इस भाव, यही पक्षी का भाव, ये बिना भजन के सुनने से भी नहीं होगा, जो बहुत सुन रहा वो कैसे होगा, कुछ सुनेगा कुछ करेगा तब इसे चेतनता की उपलब्धि नहीं होती। भक्त लोग साधु कहते हैं कि देखो इसके आगे आप मत पूछो, मत पूछो, नहीं समझे भजन करो, तब गुरु जी के बातों को तुम समझ सकेगा, नहीं तो तुम समझे गुरु जी साधारण बात का हम तो खूब अच्छी तरह से इसके लिए अधिक समझे
जैसे गोपाल मंत्र को जप करके और गोपी भाव को प्राप्त करके देश की विचारें गोपी बनी समझ महापुरुष भाव को जो दिया की बात बताई वो भाव नहीं जा सकती, अभी बहुत पहले भाव आना भी उत्तम आया, उन्हें श्रद्धाओं का भाव भी आया, पसंद आया, सब सुना देखा, गोपियों के साथ बहुत मिल गए, गोपियों का भाव आया, आने की संभावना है। ये तो महापुरुष जी की विश्वसनीयता है या उनके वर्णन उत्तर अपना की क्या विश्वसनीयता होगी सुनता है। इसलिए केवल वो वर्णन कुछ चिंता नहीं है, क्या कर रही है ये बहुत दूर पुण्य राष्ट्रीय इत्यादि परम सौभाग्य राष्ट्रीय इत्यादि का ये सब का वर्णन भी क्यों नहीं किया हमारे अधिकार को जो वर्णन भी नहीं कर सके अस्मत है श्री राष्ट्रीय आदि परम सौभाग्य वर्षा सौभाग्य जी के पूछो जैसा हम भी राष्ट्रीय जागृति सेवा करेंगे निश्चय करेंगे उनके लिए सूचना बहुत बहुत ये जो महापुरुष के वर्णन जिनने वर्णन नहीं किया बस उनके साथ आना और जाने का भी वर्णन किया, राष्ट्रीय राष्ट्रीय का वर्णन नहीं किया, पुलिस विवरणों के मन का भाव यह है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा दर्शन भी इसके लिए भी संभावना दर्शन करने की गोपियों में कृष्ण को भी और गोपियों के भावों को वर्णन और दर्शन करने की जरूरत इसलिए हम लोग और वो है क्या और ये है जीवन का ये इन सब चीजों की है थोड़ी सी भी उपलब्धि हो और ये होगा भजन और सेवा के द्वारा यदि गुरु वैष्णव या प्रमाण पैसे हो और उनकी सुविधा हो अंधकार से तो